महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सौवसाहूं, भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और उसमें हम चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 पर आ गए, 22। स्वामित्व के प्रकरण में उत्कृष्ट अनुभाग बंध के हम स्वामी देख रहे हैं और अभी हम वेद मार्गना में देखने जा रहे हैं। पढ़ते हैं यहाँ से। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में 4 घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जघन्य की बात चल रही है, अभी उत्कृष्ट की बात हो गई अपनी, जघन्य की शुरू हुई थी। पहले हमने उत्कृष्ट के देखे, अभी जघन्य की बात करें। तो जघन्य कब होगा? उसका विशुद्धि ज्यादा होगी। तो जब तक वेद का उदय है उसके अंतिम समय में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। 4 घाती कर्मों के लिए जघन्य की बात है ना। उत्कृष्ट होता तो मिथ्या दृष्टि को कहते, ज्ञानावरण का 4 घाती का। जब हमको हाँ प्रशस्त का ज्यादा, प्रशस्त का कम, और अघाती का जो सॉरी घाती का अगर हमको उत्कृष्ट देखना है तो मिथ्या दृष्टि संकलेश परिणाम वाला का। यहाँ क्या है? 4 घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर शपक अनिवृत्तिकरण जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अपन सवेद अवस्था का अंतिम लेना, टोटल अनिवृत्तिकरण का अंत में नहीं लेना, क्योंकि स्त्री वेदी तब तक है ना, तब तक उसको लेना, या पुरुष वेद का उदय तब तक लेना। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? उत्कृष्ट देखना था तो हमको क्षपक को लेना था। अब जघन्य मध्यम परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर 3 गति का जीव, क्योंकि स्त्रीवेद पुरुषवेद मनुष्य तीरेचा देव में होगा, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। हाँ समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो सकता है। हाँ दोनों ले सकते हैं, दोनों समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ले सकते हैं। गोत्र के लिए मिथ्या दृष्टि लेना है और यहाँ समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि यहाँ लिखा है मध्यम अन्यतः 3 गति का या मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि। हाँ ये अपने ही समझने के लिए। पहले उन्होंने ओग में भी बताया था ना,
लिखा था
आपको। हाँ वहाँ तो केवल 3 गति का यहाँ लिख दिया, वहाँ तो 4 गति का होगा ओग में। देखो ओग का जहाँ प्रकरण शुरू हुआ था 18 पेज पर था ना, 18 पेज पर समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि यहाँ पर भी ऐसा ही समझना है। अब देखो आगे, आयु कर्म का भंग ओघ के समान है। हाँ, जगन में अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान। फिर से हमने वेदनी और नाम के लिए जघन्य तीसरी लाइन, वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जीव वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग का स्वामी है। वहां तो ओग में तो सभी चारों गति के जीव लेगा, यहाँ तो स्त्रीवेद पुरुषवेद तीन गतियों में होगा, परंतु ये सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि ये विशेषण यहाँ पर भी लागू होगा। साता असाता असाता का जगन्य होगा, पर जहाँ वो परिवर्तमान है ना, यानी वो असाता का द्विस्थान बंद हो रहा है तो उसका जगन्य हो रहा है, क्योंकि साता के जगन्य से असाता का जगन्य अनंत गुणाहीन है। अभी आयु कर्म का भंग ओघ के समान है, जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, सॉरी पर्याप्त निवृत्ति से अपर्याप्त नहीं, क्योंकि अपर्याप्त में स्त्रीवेद होता नहीं है। तो ओके समान है, परंतु ये तिर्यंच मनुष्य तिर्यंच आयु बांध रहे, तिर्यंच आयु की लब्धि अपर्याप्त की आयु बांधने वाले, यानी मनुष्य तिर्यंच हो गए बांधने वाले भी। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब गोत्र कर्म का जघन्य वाला परिवर्तमान पर मिथ्या दृष्टि लेना, जहाँ दोनों ही बंध रहे हैं तो उसमें जघन्य किसका होगा? हाँ, तो कहते गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तीन गति का मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। नपुंसक वेदी जीव में चार घाती कर्मों का भंग स्त्रीवेदी जीवों के समान है, यानी उसका जगन्य कहाँ है? क्षपक के है, सवेद भाग का अंत में। वेदनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर तीन गति का जीव, यहाँ देव को छोड़कर उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, परंतु बाकी सब समझना है, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि या मध्यम परिणाम परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, वो सब बातें समझ लेना। यानी यहाँ पर भी स्त्रीवेदी के समान केवल वो तीन गति का, अन्य तीन गति का शरण है। आयु और गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान है, आयु में जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान लेना, क्योंकि यह नपुंसक वेदी है, अपर्याप्त जीव लेना यहाँ पर। और गोत्र कर्म सातवें नरक का नारकी, ख्याल में आई बात? ये गोत्र में सातवें नरक का नारकी सम्यक को के सन्मुख वाला लेना। आयु के लिए अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान, किसके लिए? चार घाती कर्म का क्षपक है, सवेद भाग का अंतिम अनुभाग बंधक। हाँ, ये सातवें नरक का नारक के लिए। अब अपगत वेदी जीवों में देख रहे, अपगत वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग ओघ के समान, यानी क्षपक सूक्ष्म सांप्राय और वो नव्वे का अंत, मोहनी के लिए नव्वे के अंत, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के। यहाँ तो अपगत वेदी में तो बस प्रशस्त प्रकृतियां ही बन रही है, उसका जघन्य कब होगा? जब संकलेश ज्यादा होगी, तो उपशम श्रेणी उतर कर अंत में जो अनुभाग बंद होगा उसको लेना। यहाँ स्थिति ज्यादा है ना उसकी, अनुभाग कम है क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियां हैं। तो सबको इकट्ठा लिया, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर गिरने वाला उपशामक उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों का भंग नपुसक वेदी के समान है, यानी क्षपक में अपने अपने बंध विच्छित्ति के वहां पर ले लेना उसको, यानी जहां तक उसका उदय है, क्रोध कषाय वाला, मान कषाय वाला, माया कषाय वाला। यानी क्षपक अनिवृत्तिकरण इतना ही कहेंगे, पर हमको मालूम है कहां उसका उदय की विच्छित्ति होती है। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर चार गति का जीव, यहाँ पर भी सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को ले सकते हैं, जैसे ओग में बताया था। वो वेदनी और नाम को लिया, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु और गोत्र कर्म का भंग उग के समान है, आयु में जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तिमान, और गोत्र कर्म के लिए सातवें नरक का नरक। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, इसकी विशुद्धि सबसे ज्यादा कब होगी, जब संयम के सन्मुख होगा वहां इसको लेना। तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध संयम के अभिमुख और अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग ओग के समान है, क्योंकि मत्ति ज्ञानी श्रुता ज्ञानी लिखा ही है, तो वेदनी और नाम के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला है जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित वाला, और गोत्र के लिए तो सातवें नरक का नार के लेना, सम्यक तो के अभिमुख वाला लेना। मत्ति ज्ञानी श्रुता है तो आयु के जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान को लेना। इसी प्रकार विभंग ज्ञानी अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवों के जानना चाहिए, परंतु यहाँ हम अभव्य में संयम के सन्मुख नहीं ले सकते, इतनी विशेषता है कि अभव्य जीवों में द्रव्य संयत जीवों के जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए, द्रव्य लिंगी मुनि वहां विशुद्धि ज्यादा है, क्योंकि नवे ग्रवे तक जाने योग्य उसके परिणाम है वहां पर। बारंबार उसको द्रव्य संयमी कहा है ना, द्रव्य संयत। अब 23 पेज पर आते हैं। आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग ओघ के समान है, यानी क्षपक सूक्ष्म सांप्रदाय क्षपक अनिवृत्तिकरण मोहनीय के लिए। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अब यह समय दृष्टि तो है ही है, तो केवल हम मध्यम परिणाम वाला कहेंगे परिवर्तमान। अन्यतर चार गति का जीव परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला है, इतना ही लिखा उन्होंने। वो छठे तक वो सात आशा तक दोनों ही बनते हैं ना, कहीं कर दो मध्यम परिणाम, कहीं कर दो। मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, तो यहाँ चार पाँच छह का क्या सवाल है। जब हम मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि की भी कंपेयर करते हैं अन्यत्र हम, तो यहाँ कंपेयर करने का कोई प्रयोजन नहीं है ये कहना। देखो इसमें ये उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया है, कौन है इन्हें, उसका स्वामी है वगैरह वगैरह लिखना था, वो रह गया, कोई बात नहीं। देखो अन्यतर चार गति का जो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला है, इतना ही लिखा है। हाँ यानी उसमें यानी उसमें हम हमेशा पूरा वाक्य लिखते हैं ना, उक्त कर मध्यम अन्यतर चार गति का जीव जो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला है, और आगे भी लिखते हैं जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान है, वो उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वो तो समझ रहे जनाब, आयु के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब यहाँ तो अपर्याप्त नहीं कहना, पर्याप्त, जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। देखो समय दृष्टि की जघन्य आयु इन जनरल है, समय दृष्टि तिरंचाई बांधता नहीं है, मनुष्य आयु बांधेगा तो कितना पृथक वर्ष का बांधेगा, देवनार की समय दृष्टि देव 10,000 वर्ष तो मिथ्या दृष्टि नहीं बांधेगा, समय दृष्टि नहीं बांधेगा 10,000 वर्ष की, वो तो साधिक पल्ले तो बांधेगा ही बांधेगा, क्योंकि वो भवनत्री की आयु नहीं बांधता समय दृष्टि जी। इसलिए आयु इन जनरल में जघन्य आयु मनुष्य आयु लेना है पृथक वर्ष की, यानी 8 वर्ष और कुछ आगे। परंतु चार गति का जीव लिया, अनुभाग की बात चल रही है, हम स्थिति की बात देख रहे थे। नानापन चारों गति का जीव, पन चारों गति के जीव जो कोई आयु बांध रहे हैं वो जघन्य अनुभाग सहित बांध रहे, बस इतना ही। पर जघन्य देवायु जघन्य मनुष्य आयु में डिफरेंस पड़ेगा ना, निकालो पांचवी पुस्तक निकालो, शांति और अल्पभूत जघन्य का 224 से 228। अट्ठाईस में होगा क्योंकि अभिनिबोधिक ज्ञानियों में देखना है ना उनको। मूल लोक के समान भंग है, मूल लोग में तीरियंच आयु सबसे मंद है, मनुष्य का अनंत गुना है, नरकायु का अनंत गुना है, देवायु का अनंत गुना है, तो मनुष्य आयु से देवायु का अनंत गुना होगा। उसमें स्वामित्व ले लो फिर, स्वामित्व तो इसी पुस्तक में होगा, चौथी पुस्तक में स्वामित्व होगा। उत्तर प्रकृतियों में स्वामित्व लेना और उसमें हमारी मार्गणा लेना, स्वामित्व पेज नंबर 228। वो तो नेचुरल ना, मनुष्य का जगह ने कौन कर रहा है, पर मनुष्य और देवों देवायु में कौन किसका क्या होगा वो बात तो नहीं रहती ना यहाँ पर। वो अभी जो अल्पभूतों में हमने देखी थी ना,
तो यहाँ पे दो गति का जीव लेना
ये ऐसा लगता है, चार गति का बराबर नहीं लगता है। अभी वहाँ हमने कौन सी बात देखी, 228 देखी थी ना अल्पभूतों में,
आयु दो गति का रहेगी, मगर कोई भी गति को ले सकते हैं
आयु इन जनरल में अगर हम देखते हैं
तो चारों गति गति क्योंकि देव आयु का
आयु भी
दो गति वाले बात
करेंगे। आयु में जगन्य किसका है?
यहाँ पे
दो ही आयु बन रही है,
दोनों आयु का जगन्य,
दोनों आयु का नहीं लेना।
यहाँ पे दो ही आयु बन रही,
जब हम कर्म का उत्कृष्ट कहते तो किसका है? मोहनीय का है। अब यहाँ जगन्य मनुष्य आयु का होगा। एक मिनट जरा, इसमें ले लो परस्थान में जरा देख लो। अपनी अपनी प्रकृति जान लेना चाहिए, इतना ही लिया। यानी ओग में जानना चाहिए, अपनी अपनी प्रकृति विशेष जानना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ओग में वो उत्कृष्ट वाली बात थी, उनको जगन्य देखने, सॉरी। पेज नंबर 234, वही पहले 48 जिसको हमने नाम नंबर दिया है, चिरियन चायु आ गई। दो सौ चौतीस पर है उत्कीर्ण चायु के जगन्य से किसका क्या है? जगन्य प्रकरण, जगन्य का प्रकरण
इसमें ना?
नहीं नहीं, अपनी पुस्तक में, सॉरी सॉरी सॉरी, पांचवी पुस्तक में। देखो यहाँ मूल प्रकृति के हम चारों, अभी जब हम नीच गोत्र उच्च गोत्र की वेदने का नीच वेदने का जगन्य देख रहे, सॉरी गोत्र का जगन्य है तो दोनों का बताते हैं क्या? तो जिसका जगन्य होगा उसको कहेंगे कि नहीं? तो यही हम ही समझने के लिए किसकी कौन सी गति की बात है, कौन सी आयु की बात है। उनमें से जगन्य किसकी बनती है? अनंत गुणा, तो मनुष्य आयु के लिए अपेक्षा से कहना पड़ेगा, तो बांधने वाले देवनारकी हो गए। समझ में आती है बात? जो जगन्य कर रहा है उसकी बात करेंगे। यहाँ
देवायु की तरह से तीरंज चाहे मनुष्य भी दिखा मुझे,
किस में
नंबर में?
देवायु नीचे एकदम, मनुष्यायु का अनुभाग बहुत कम है, उससे देवायु का अनंत गुना है। ओग में हमने पहले तीर्यन चायु लिया, फिर नरकायु लिया, फिर मनुष्यायु
का।
ओग में अभी कहाँ गए हम? पेज नंबर 23 अपने चार नंबर की पुस्तक, हाँ यानी आयु के लिए है ना। अन्यथा चार गति का जीव लिया उन्होंने, क्वेरी करके लिखना ना, देव और नारकी, देव और नारकी मनुष्य आयु बांध रहे हैं।
दो गति का जीव, देव नारकी,
देव नारकी, मनुष्यायु बांध रहे। क्योंकि मनुष्य तिर्यंच देवायु बांधेंगे तो उसका अनंत गुण अधिक होगा, उसका जगन नहीं कहलाएगा। अरे वहां कहां लिखा है चार गति का जो? ऊपर देखो 23 पेज पर प्राकृत में। हम यहाँ आयु जहन अनु कस्त अन्न दर पज्जत निवत्ती निवत्तमान जहन अनुभाग वर्तमानस। यहाँ चार गति का लिखा नहीं है। ऊपर चार गति की बात लिखी ही नहीं थी, नीचे लिखा है। वो चार कैंसिल करके दो गति का लिखो ना। हम क्या
अन्यतर जीव लिखे ना, फिर दो
अन्यतर अन्यतर जीव लिखो।
चार गति का सिर्फ निकाल देना।
एक्चुअली चार के बदले दो ही लिखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य और तीरें जो वो जगन्य नहीं करेगा। सॉरी, देवनार के मनुष्य बांधने वाला जगन्य बंद करेगा। आगे बढ़े अभी वो चार के बदले दो लिखो बस इतना। देवनार के मनुष्य ही बांध रहे हैं, बस उसी को जगन्य होगा। देवायु बांधने वालों को मनुष्यायु से अनंत गुणा होता है। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी गुण, अभी सारी सम्य दृष्टि है, उच्च गोत्र ही बंध रहा है तो उसका जगन्य कब होगा? ये प्रशस्त प्रकृति है तो जहाँ संकलेश ज्यादा होगा, तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख है ना। चौथे गुण स्थान वाला जब मिथ्यात्व के अभिमुख है और जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जुग, यानी मनुष्य तीरंज भी चौथे गुण स्थान वाले लेना है। उक्त कर्म के जगन्य अनुभव मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा चार गति के तो बता दिए, पर मनुष्य तीरंज पांचवे गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, मनुष्य छठे सातवें वाले भी हो सकते हैं। तो मिथ्यात्व के अभिमुख वाला जो है वो चौथे गुण स्थान वाला लेना, असंयत समय दृष्टि लेना पड़ेगा। क्योंकि अभिनिबोधिक ज्ञानी में सभी गुणस्थान आ गए ना, मनुष्यों में तो सभी आएंगे। तो चार गति का जीव जो लिखा है ना, हम अपने लिए लिखें चार गति का जीव असंयत समय दृष्टि। देवनार की तो असंयत ही हो गए। मनुष्य तीरंचों में अधिक संकलेश किसके होगा? चौथे वाला जो मिथ्यात्व में जाता है तब होगा। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। मन परे ज्ञानी जीवों में यहाँ वेदनी और गोत्र लिखा है, वेदनी निकाल दो, केवल गोत्र कर्म की बात ले लो। हाँ, पेज 212 उत्तर प्रकृतियों में 212 निकाल के देखो यहीं पर, क्योंकि हमेशा वेदनीय नाम को इकट्ठा लेते हैं, गोत्र को अलग रखते हैं, क्योंकि वेदनीय में तो परिवर्तमान भी है, गोत्र में तो उच्च गोत्र ही बन रहा है। और मनपरे ज्ञान में गोत्र का जगन्य कब होगा? जब संकलेश ज्यादा होगे, वो कब होगा? संयम के सम्मुख वाला लेना। देखो 212 निकालो, जगन्य का स्वामित्व है ना। यही तो, इसीलिए उसने निकालना था। वेदनी को निकालना है। दो सौ बारह क्यों कह रहे आप? 228 में, 212 में क्या लिख मिला आपको?
वेदनी को निकालने का है ना।
हाँ,
उसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 212।
हाँ,
जैसे चौथी लाइन में साथ
तो ये मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि को है। हम उसी मार्गणा की बात निकालेंगे मनोपरिज्ञानी की, जो 229 पेज पर है। वहाँ पर उच्च गोत्र का जगन्य किसका है? देखो मन परिज्ञानी 464 पेज, 464 पैराग्राफ, पेज नंबर 229 मिला। लाइन चौथी, चौथी लाइन के पहले जो पूरी लिस्ट है उसमें लास्ट में उच्च गोत्र लिखा है। उच्च गोत्र का जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सर्व संकलेश युक्त और असंयम के अभिमुख अन्यतर प्रमत्त संयत जीव लिया, बराबर। अभी हाँ, तो यहाँ तो अभी बाकी तो अभी निबोधिक समान हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ वेदनीय निकाल देना। उत्तर प्रकृतियों का पेज 212 से शुरू हुआ था, पर 229 पर मनोपरिज्ञानी की बात थी। 212 के ब्रैकेट में 229 लिख के रखो, यानी मार्गणा स्पेसिफिक हो जाती है। देखो फिर पढ़ती में, मन परिज्ञानी जीवों में गोत्र कर्म के वेदनीय और ये दो शब्द निकाल दे हमने, ऊपर भी निकालना है वे, मन पज्ज में से वे निकाल देना। तो गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त असंयम के अभिमुख और जगन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर जीव गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अगर दोनों का होता तो उक्त कर्मों का कहते हैं। शेष कर्मों का भंग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवों के समान है, यानी चार घाती का तो क्षपक में होगा जगन्य, है ना? आयु तो एक ही बनती है। ये गोत्र की बात होगी, वेदनी और नाम, मध्यम परिणाम वाला परिवर्तमान किसमें? मिथ्यात्व मन परिज्ञानी मिथ्यात्व में जाता ही नहीं, वो इसीलिए उसको असंयम के सन्मुख लिया। अभिनिबोधिक ज्ञानी में गोत्र का कब किया था? मिथ्यात्व के सन्मुख, चौथे गुणस्थान वाला। यह मन परिज्ञानी में सर्व संकलेश कब हो गए? असंयम के सन्मुख, वो मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे। शेष कर्म इन्हें कौन से रह गए अभी? वेदनी और नाम, वो परिवर्तमान, वो घाती का तो बता चुके, वो तो क्षपक के होगा। और आयु में जगह ने पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान वगैरह वगैरह। अब ये मन परिज्ञानी तो है ही मनुष्य, अब यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मनुष्य है ऐसा वगैरह। तो मध्यम परिणाम तो लेना है यहाँ पर, तो अभिनिबोधि ज्ञानी के समान हो गए। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए, परंतु संयमी जो है वो छठे गुणस्थान से मिथ्यात्व तो में जा सकता है। तो यहाँ असंयम के सन्मुख लिखा था, वह हमको मिथ्यात्व के सन्मुख लिखना पड़े। इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी मिथ्यात्व के अभिमुख जीव है, वो भी प्रमत्त संयत, क्योंकि सातवें से मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। अभिनिबोधि ज्ञानी में असंयत समय दृष्टि को लिया था, यहाँ प्रमत संयत जीव को, क्योंकि संयम संयत मार्ग है हमारी, इसलिए। अब आगे सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी हमें सोचना, यहाँ के गुणस्थान छठे से नौवे तक है, तो क्षपक नौवा गुणस्थान अंत वाला लेना, अन्यतर अनिवृत्तिकरण क्षपक सबके लिए, चारों के लिए एक साथ, यहाँ पर उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग मनपर्य ज्ञानी जीवों के समान है, इतनी विशेषता है कि संयत के समान कहते तो भी चल जाता है। इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी मिथ्यात्व के अभिमुख और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान उक्त जीव है। संयत के समान कहते तो भी चल जाता है। परिहार विशुद्ध संयत जीव में गुणस्थान छह और सात दो ही है। चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु में परिवर्तमान नहीं कहते हैं, आयु में तो मध्यम परिणाम कहेंगे केवल। एक्चुअली उसमें मध्यम परिणाम भी नहीं है, जघन्य अनुभाग मंदिर में अवस्थित इतना ही लिखते हैं, हमेशा हम आयु में क्या लिखा है उसमें मध्यम परिणाम भी नहीं लिखे थे। आयु में
आयु में
आयु में जघन्य बांधना है ना,
हाँ तो मध्यम
परिणाम, मध्यम परिणाम वाला, परंतु वो तो पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणाम वाला जघन्य अनुभाग में अवस्थित, पर यहाँ परिवर्तमान शब्द नहीं लगाना आयु के लिए। मध्यम परिणाम युक्त बस इतना लेना, अब जघन्य अनुभाग बांधने वाला इसे लिख लिया ना उन्होंने, तो उसमें उसका यथायोग्य आ गया। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के अभिमुख तथा जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर प्रमत्त संयत जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। यहाँ तो उच्च गोत्र ही बन रहा है, जहाँ संकलेश ज्यादा हो गए वहाँ उसका जघन्य बंधेगा, तो छठे गुणस्थान वाला परिहार विशुद्धि में से सामान्य मुनि राजा ने, वो तो सामायिक छेदोपस्थापना वाले हो जाएंगे, तब उनका जघन्य अनुभाग बंध होगा।
तो सामायिक छेदोपस्थापना
कम है, हाँ ऊपर चढ़ने वाले के सामायिक छेदोपस्थापना वाले यानी वो तो नब्बे तक है, यानी ऐसे सामान्य हम जनरल कथन नहीं कर सकते, पर छठे सातवें गुणस्थान वाले की अपेक्षा से परिहार विशुद्धि वालों से संकलेश में वो सामायिक में वो छठे में सातवें में से नहीं जाएंगे, छठे में आकर संकलेश ज्यादा है तो वो सामायिक छेदोपस्थापना संयम हो जाता है। अरे मिथ्या तो क्या असंयम में भी नहीं होगा,
नहीं होगा
वो सात छठे में ही जाएगा और वहां से जो कुछ उसका आगे जाना है। 24 नंबर का पेज सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में, ये तो दसवां गुणस्थान है। अभी तीन ही घाती कर्म बन रहे हैं ना, मोहिनी बनता ही नहीं है। तीन घाती कर्मों का भंग ओघ के समान है, એને સૂક્ષ્મ સાંપ્રાયિક શપક અંતિમ અનુભાગ બંધ મેં વિદ્યમાન વગેરે વગેરે. ઇતની વિશેષતા હૈ કિ વેદનીય નામ ઓર ગોત્ર કર્મ કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ અભી યહાં ઉસકે સંકલેશ ચાહીએ જ્યાદા તો ઉષમ શ્રેણી સે ગિરને વાલા અંત મે લેના ઉસકો ઓર જઘન્ય અનુભાગ બંધ મે અવસ્થિત જીવ ઉક્ત કર્મો કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી હૈ એને સૂક્ષ્મ સંપ્રાય કા અંતિમ સમય લેના વા ઉતરને વાલે ઉતરને કે બાદ નહીં જબ તક સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય હૈ ને દસવે ગુણ અભી વો નવે મેં એન્ટર કરને વાલા હૈ વો
પરિણામ
કી સમાનતા હૈ પરંતુ ઉસકા બંધ બઢ રહા હૈ ના વો કૌન સા વાલા પોઈન્ટ લેના જઘન્ય અનુભવ કરને વાલા
હા તો લાસ્ટ સમય વાલા લેના ના
વહી તો ઇસીલિયે કહા ઉન્હોને સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય કે કિસી ભી સમય મેં નહીં હોગા અંતિમ સમય પણ ઉસી કો જગન્ય અનુભાગ બંધ મેં અવસ્થિત કહા જો ક્ષપક મેં ભી હમ ઉલટા કહેતે ના ઘાતી કર્મો કે લિયે જગન્ય અનુભાગ બંધ મેં અવસ્થિત પણ વો કબ હોતા હૈ અંત મેં હોતા હૈ સભી જો ઉનકો સમાન હોતા હૈ વો બાત સચ હૈ એક એક સમય કા સમાન હૈ પણ પ્રતિ સમય અનુભાગ બંધ જો હૈ ઉતરને વાલે કે અનંત ગુણા બઢતા ચલા જાયેગા
ઇસમેં
વો ભી સમાન હૈ હરેક મેં સમાન નવે ગુણસ્થાન કે ઉપર નવે ગુણસ્થાન સે લેકર પરિણામ સમાન હોતે એક સમય કા સુનિશ્ચિત એક પરિણામ ઉસમેં ભી ઓર ચઢને વાલે મેં ભી યે હો ગયા સંયતા સંયતો મે અભી યહાં પર ભી એક હી ગુણસ્થાન હૈ તો હમે વિશુદ્ધિ કહાં હૈ સંકલેશ કહાં હૈ ઉસકો દેખના પડેગા તો ચાર ઘાતી કર્મો કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ તો સર્વ વિશુદ્ધ ઓર સંયમ કે અભિમુખ અબ જબ સંયમ કહા તો મનુષ્ય કો હી લેના પડેગા અન્યતર મનુષ્ય સમય દૃષ્ટિ જીવ એકચ્યુઅલી સમય દૃષ્ટિ લિખા હૈ પણ સંયતા સંયત જીવ ઉક્ત કર્મો કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી હૈ વેદનીય નામ ઓર આયુ કર્મ કા ભંગ પરિહાર વિશુદ્ધિ સંયત જીવો કે સમાન હૈ યાને વેદનીય ઓર નામ કે લિયે પરિવર્તમાન મધ્યમ પરિણામ કહેંગે આયુ કે લિયે મધ્યમ પરિણામ કહેંગે ગોત્ર કર્મ કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ અભી યહાં તો ઉચ્ચ ગોત્ર બંધ રહા હૈ સંકલેશ કબ હોગે તો મિથ્યા તો કે સન્મુખ વાલે કે હોગે તો ગોત્ર કર્મ કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ સાકાર જાગૃત નિયમ સે ઉત્કૃષ્ટ સંકલેશ યુક્ત મિથ્યા તો કે અભિમુખ ઓર જઘન્ય અનુભાગ બંધ મેં વિદ્યમાન અન્યતર તિર્યંચ ઓર મનુષ્ય ગોત્ર કર્મ કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી હૈ ચાર ઘાતી કે લિયે તો સાતવે મેં જાને વાલા જીવ લિયા હતા તો મનુષ્યો મેં લિયા હતા મિથ્યા તો મેં જાને વાલા મનુષ્ય તિર્યંચ દોનો કો લિયા અસંયતો મેં અસંયત કે નીચે પહેલે ચાર ગુણસ્થાન આ ગયે ચાર ઘાતી કર્મો કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ કે સાકાર જાગૃત સર્વ વિશુદ્ધ સંયમ કે અભિમુખ યહાં પર ભી એસા લેના ઓર જઘન્ય અનુભાગ બંધ મેં વિદ્યમાન અન્યતર મનુષ્ય ઉક્ત કર્મો કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી હૈ શેષ કર્મો કા ભંગ ઓગ કે સમાન હૈ શેષ કર્મો મેં હમકો લેના હૈ વેદનીય ઓર નામ કા તો પરિવર્તમાન મધ્યમ મિથ્યા દૃષ્ટિ યા સમય દૃષ્ટિ દોનો કો લેંગે ગોત્ર કે લિયે સાતવે નરક કા નાર કે લેના આયુ કે લિયે અપર્યાપ્ત નિવૃત્તિ સે નિવૃત્તમાન શેષ કર્મો કા ભંગ ઓગ કે સમાન અબ લેશા માર્ગણા કૃષ્ણ લેશા મેં ચાર ઘાતી કર્મો કે જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ સર્વ વિશુદ્ધ અન્યતર નાર કી સમય દૃષ્ટિ કી દેખો દેખો चौथे गुणस्थान की अपेक्षा चारों गतियों में विशुद्धि तो समान हो सकती है, परंतु मनुष्य में चौथे गुणस्थान वाले को कृष्ण लेशा तो हो सकती है, पर अति विशुद्धि में उसकी लेशा तो शुभ हो जाएगी, और नार की कितना भी विशुद्धि हो जावे उसकी कृष्ण की तो कृष्ण ही रहेगी। फिर से मनुष्य में भी कृष्ण लेशा वाला होता है चौथा गुणस्थान वाला, संयम के सन्मुख वाले तो शुभ लेशा में संयम के सन्मुख होगा, यही तो कह रहे हैं। इसलिए सातवें नरक में उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि होगी तब लेना। देखो कृष्ण रेशा में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सर्व विशुद्ध अन्यतर नार की समय दृष्टि जो उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है, यानी गोत्र कर्म के तो सातवें नरक में लेना, यहाँ कृष्ण रेशा तो है ही है। वेदनीय कृष्ण लेशा है ना वहाँ पर, उसी को लेना। वेदी और नाम तो परिवर्तमान मध्यम परिणाम है। आयु कर्म का भंग ओग के समान है, कृष्ण लेशा है ना तो अपर्याप्त जीवों के भी होगा लब्धि अपर्याप्त, हाँ तो जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान ऐसा लेना, वो मनुष्य तीलेंश में ही होगा। इसी प्रकार नील और कापोत लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। अब यहाँ वो सातवें नरक का नारके नहीं ले सकते, हाँ अब यहाँ तो अग्नि का एक वायु का एक को ले सकेंगे। देखो इसी प्रकार नील और कापोत लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर बादर अग्नि का एक और वायु का एक जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। कृष्ण लेशा में तो वो तो नारकी को ही लेना है, और बाकी दो लेशा में तो ऊपर के नरकों में तो इतना उसका तो नहीं होता है, विशुद्धि बढ़ेगी तो उच्च गोत्र बंधेगा मिथ्या दृष्टि को, इसलिए यहाँ लेना अग्नि का एक वायु का एक में, वो भी बादर पर्याप्त उनको लेना। इतनी विशेषता है कि नील लेशा में तत्प्राग विशुद्ध जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है।
कपट में सर्व विशुद्ध, कपट में सर्व विशुद्ध इसमें तत्प्राग
है। अग्नि का एक वायु का एक में जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी बताया, वो गति बताई ना अग्नि का एक वायु का एक। नील और कपोत मध्य नील कपोत ले शौले यानी देखो देखो इसलिए कहना है अग्नि का एक वायु का एक की बात हो रही है। अग्नि का एक वायु का एक में अभी देखो लेशा में उसको लगाना और उन जीवों में लेशा को लगाना अलग बात है, कैसे मैं बताती हूँ। अग्नि कायिक और वायु कायिक में सर्व विशुद्ध परिणाम में लेशा कौन सी होगी? वही कह रहे, और अग्नि कायिक वायु कायिक में नील लेशा वाला जीव कैसा होगा? थोड़ा कम तत्प्रायोग विशुद्ध वाला होगा, और विशुद्ध हो जाएगा तो उसकी कापोत लेशा हो जाएगी, ये कह। क्योंकि अग्नि का एक वायु का एक में और विशुद्धि ज्यादा हो जाएगी तो कापोत लेशा होगी, क्योंकि अधिक विशुद्धि में कापोत लेशा हो जाएगी।
तो एक बात निश्चित है ना, एक जीव से सबके लिए मध्यम परिणाम सभी का तरीका है, बाकी विशुद्धि और सत्वेश की स्थान बढ़ती है।
ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारी बातें ना, अभी कृष्ण लेशा वालों में अगर कंपेयरिंग करेंगे
तो
अब पंचेंद्रिय में भी क्षपक को अगर लेते हैं तो अलग बात होती है। पंचेंद्र में विशुद्धि तो ज्यादा है ही है, नो डाउट। नेचुरली संकलेश तो सर्वोत्कृष्ट उस पंचेंद्रियों के ही होता है। संकलेश में तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, विशुद्धि में ही थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ देखो पीतलेशा में 24 नंबर का पेज लास्ट, चार घाती कर्मों के। अब पीतलेशा कहाँ, कौन से गुणस्थान तक है? सातवीं तक। और वहां तक, हाँ वहां तक चार घाती कर्मों का बंध है। तो चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग सौधर्म कल्प के समान है, यानी गोत्र में भी परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा, जहाँ उच्च गोत्र निज गोत्र दोनों पड़ते हैं। उच्च गोत्र का नहीं लेगा ने, हमेशा ओग में गोत्र का कहाँ लिया हमने? वो सातवें नरक का नारकी नहीं होगा तो कहाँ लगाते हैं? मध्यम परिणाम, वैसे यहाँ लेना। मिथ्या दृष्टि को लेना जहाँ नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों बनते हैं, और नीच गोत्र के जघन्य से उच्च गोत्र का जघन्य अनंत गुना ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला लेना, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला। सौधर्म कल्प के समान यानी देवों के समान बताया ना यहाँ पर, और देव में हमने क्या देखा? देखो देवों में हमने उपरिम ग्रहवेग तक ऐसी बातें देखी थी, 19 वाला देख लो। मिला आपको देवों में वहां क्या लिखा है? उपरिम ग्रहवेग तक दूसरी पृथ्वी के समान बन गए, और सातवीं पृथ्वी में गोत्र का वो सम्यक के सन्मुख वाला लिया, बाकी 1 से 6 नरक तक तो हमने, हाँ मिथ्या दृष्टि को परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला लिया। ऐसे यहाँ लेना है, देवों में लेना है मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान परिणाम। शेष कर्मों में गोत्र की बता दिया, वेदनीय और नाम के लिए मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि मध्यम परिणाम वाला लेते हैं। इसी प्रकार पद्मलेशा में भी जानना चाहिए, शुक्ल लेशा में, अभी शुक्ल लेशा में तो क्षपक श्रेणी भी है, चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी ओघ के समान है। यानी तीन घाती सूक्ष्म सांप्राय क्षपक और मोहनीय अनिवृत्तिकरण क्षपक अंत में, शेष कर्मों का भंग आनत कल्प के समान है, क्योंकि शुक्ल लेशा जो है आनत से लेकर ऊपर तक है, परंतु आनत में तो मिथ्या दृष्टि भी है ना, इसलिए आनत के समान बता दिया। फिर से
गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग हम आनत कल्प नहीं लेते हैं, अरे सातवीं पृथ्वी में नहीं लेते हैं।
अरे यहाँ पीतलेशा में सवाल कहाँ है?
हाँ। मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि शुभलेशिया में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग
मिथ्या दृष्टि मध्यम परिवर्तमान वाला, परिवर्तमान मध्यम परिणाम
नहीं, पर वो देव को ही होगा ना, क्योंकि वहाँ पे एक ही लेशिया है, और मनुष्य में तो विशुद्धि में शुभलेशिया हो जाएगी।
फिर से
मनुष्य में शुभलेशिया विशुद्धि में होगी, और देव में तो एक ही लेशिया है, तो वहाँ पे मध्यम परिणाम
ऐसा नहीं लेना। आप पीतलेशा वाले जो उनके कंसीडर करो।
हाँ तो पीतलेशा में जगन गोत्र कर्म का जगन कहाँ?
मिथ्या दृष्टि के होगा,
तो देव को होगा तो
मनुष्य को भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा आपको ये कहना है मनुष्य मिथ्या दृष्टि जो देवगति को ही बांधेगा पीतलेशा वाला, हाँ। ऐसा सोचो, हाँ। विशुद्धि की अपेक्षा मत सोचो,
हाँ। वो देवगति बांधे,
वो देवगति ने उच्च गोत्र ही बांध रहे हैं, तो यहाँ गोत्र का देवों में ही होगा,
देव में।
इसलिए उन्होंने सौधर्म कल्प के समान बताया। मिथ्या दृष्टि देव लिखो आगे गोत्र कर्म में परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि देव होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी होगा तो पीत लेशा में देवगति बांधेगा तो उच्च गोत्र बांधेगा। तो कहते इसी प्रकार पद्मलेशा वो हो गई, शुक्ल लेशा में भी हमने क्षपक प्रकृतियां लिखी और बाकी आनंद कल्प के समान है, यानी वहां पर भी गोत्र कर्म का वो देवी मिथ्या दृष्टि देवी उसको करेगा। अब आगे 25 पेज पर आना, क्षायिक समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों का भंग ओग के समान है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि तो क्षपक से नहीं चढ़ेगा तो क्षपक में होगा। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अभिनिबोधिक ज्ञानी में तो मिथ्या तो के अभिमुख लिया तो ये तो ले नहीं सकते, इसलिए सर्वोत्कृष्ट संकलेश वाला लेना। शेष कर्मों का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है, यानी वो वेदिनी और नाम के लिए तो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, आयु में भी चारों गति का जीव लेना है। आयु में भी हमने मनुष्यायु बांधने वाला ही लेना पड़ेगा। अवधि ज्ञानी में उन्होंने चारों गति का लिखा था ना, इसलिए हमने लास्ट टाइम उसमें दो गति का जीव लेना पड़ेगा। देव और नारकी होगा। वेदक समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों का भंग पीत लेशा वाले जीवों के समान है, यानी अप्रमत्त है सर्व विशुद्धि वाला लेना। हाँ, तीसरी लाइन में शेष कर्म ने कौन से रह गए अभी? यहाँ तो चार घाती हो गए, अब शेष में वेदिनी और नाम के लिए वेदिनी परिवर्तमान मध्यम परिणाम, गोत्र के तो ऊपर उन्होंने बता दिया। और आयु में देव और नारकी मनुष्यायु बांध रहे, उसकी बात आयु के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी देव नारकी हो गए, वही मध्यम परिणाम वाले कहेंगे हम उसको। आगे बढ़ेंगे अभी नहीं, नहीं हमने सोची, उन्होंने तो अवधि ज्ञानी के समान बता दिया। वेदनीय नाम और आयु, हाँ। अब मैं आगे का पढ़ रही हूँ, चौथी लाइन, वेदक समय दृष्टि जीवों में। अब वेदक समय तो चार से सातवें तक है, सर्व विशुद्ध सातवें वाला है, तो चार घाती कर्मों का भंग पीत लेशा वाले जीवों के समान है, यानी सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त। श्रेणी के सन्मुख वाला शुक्ल लेशा में पहुंच जाएगा। हाँ, वैदिक में ही ले सकते, पीत में नहीं ले सकते। वेदक समित्व में सर्व विशुद्ध लेना, वहां पीत लेशा में सर्व विशुद्ध लिया था। हाँ, शेष कर्मों का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है, यानी कि वेदक समय दृष्टि है। गोत्र का कब होगा? तो मिथ्या तो के सन्मुख होगा, और वेदनीय नाम का मध्यम परिणाम, आयु के लिए देव नारकी बांधेंगे जगन। किसका? गोत्र का वैदिक समय दृष्टि है, मिथ्या तो के सन्मुख वाला लेना। क्षायिक में तो वो नहीं ले सकते थे ना, इसलिए उसकी बात अलग बताई। उपशम समय दृष्टि जीवों में तीन घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब यहाँ तो सूक्ष्म सांप्राय चढ़ने वाला लास्ट में लेना। द्वितीय उपशम क्यों लिया? हाँ, इसलिए द्वितीय उपशम लेना। उपशम समय दृष्टि जीवों में तीन घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अंतिम जघन्य अनुभाग में बंध में अवस्थित अन्यतर उपशामक सूक्ष्म सांप्राय जीव, उपशम समय के साथ वाला लेना है ना, द्वितीय उपशम वाला, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। गोत्र कर्म का तो विद्या तो के संगत, वेदनीय और नाम का तो मध्यम परिणाम में लेना। मोहनीय कर्म के, अब यहाँ तो आयु तो बनती नहीं है उपशम समय दृष्टि की, मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर उपशामक अनिवृत्तिकरण जीव मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी वो तो अंतिम अनुभाग बंद करने वाला वगैरह वगैरह सब समझ लेना उसका। सासादन समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के, अभी विशुद्धि कब होगी, अभी अभी सासादन में आया है वो, जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी कौन है? सर्व विशुद्ध अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी है। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला चार गति का जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म का भंग नारकियों के समान है। क्योंकि सासादन वाला है, पर्याप्त की आयु बांधेगा, परंतु तीरंच आयु का जघन्य करेगा। पर्याप्त ही है तो नहीं, सासादन वाले संगी पंचेंद्रिय जीव है अभी समय तो है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत और सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी का नारकी जीव, ये महत्व की बात है सासादन में, क्योंकि सासादन में आया है अभी भी, तो निज गोत्र ही बांधेगा नियम से। बाकी जो निज गोत्र उच्च गोत्र कुछ आते आते तो उच्च गोत्र का बांधेंगे, बाद में निज गोत्र बांधेंगे, तो यहाँ तो निज गोत्र नियम से बांधेगा सर्व विशुद्ध अवस्था में। अन्यतर ये कहाँ गया, सासादन में ऊपर चली गए, आयु का हो गया, गोत्र का हो गया। साकार जागृत सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी का नारकी जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब ये विशुद्धि कब होगी, चौथे के सन्मुख वाले की, सर्व विशुद्ध और सम्यक के अभिमुख अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला चार गति का जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब यहाँ तो उच्च गोत्र ही बन रहा है, तो मिथ्या तो के अभिमुख वाला लेंगे। साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और मिथ्यात्व के अभिमुख अन्यतर चार गति का जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। हाँ, क्योंकि निज गोत्र की बंध विच्छेदी दूसरे में हो गई, तो तीसरे में तो उच्च गोत्र ही बन रहा है लगातार। हाँ, साकार उपयोग में, ये संकलेश में है ना,
तो
संकलेश में जाके वो मिथ्यात्व में जाता है ना, साकार उपयोग में पलटेगा। असंगियों में एकेंद्रियों के समान भंग है, क्योंकि विशुद्धि होगी तब पंचेंद्रियों के होगा, असंगियों में पंचेंद्रियों के विशुद्धि ज्यादा होगी। एक इंद्रियों की समान है वो निज गोत्र वगैरह का वहाँ ले लेना। पर एक इंद्रियों के समान भंग है मैं एक असंगियों में सर्व विशुद्धि में वो बादर एक इंद्रिय जो को लेना है बादर एक इंद्रिय को लेना पड़ेगा बादर एक इंद्रिय को यहाँ नहीं लेना उसमें लिया था उत्कृष्ट में लेना उत्कृष्ट में लेना लिया था तो एक इंद्रिय के समान क्यों कहा जरा उत्तर प्रकृति में देख लो थोड़ा स्वामित्व असंगी जीव में 237 निकालिए पंचेंद्रिय लिया है ना हाँ गोत्र के लिए एक अन्यत्र मध्यम परिणाम वाला वहाँ किसी इंद्रिय वाला नहीं कहेंगे
पर गाति कर्मों के लिए जगत रूप में दर्शन की प्रति को लेना
हाँ
और गोत्र करने के लिए
एक इंद्रिय को लेना ना ना एक इंद्रिय के समान गोत्र का तो एक इंद्रिय के समान है और चार घाती का तो सर्व विशुद्ध पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय लेना ऊपर क्या लिया असंगी इंद्रिय भंगो यह हम लिखेंगे बाजू में यानी सर्व विशुद्ध ऐसा जो है वो उसमें देखो चार घाती कर्मों का असंगी पंच असंगी तो लिखा ही है तो हमें पंचेंद्रिय लिखना है पंचेंद्रिय सर्व विशुद्ध यानी चार घाती कर्मों का करने वाला कौन है पंचेंद्रिय सर्व विशुद्ध जगन्य अनुभाग बंद करने वाला यह अनुभाग बंद में अवस्थित लिखो तो भी चलेगा ऐड नहीं करना है अपने इंफॉर्मेशन असंगी का असंगियों में एक इंद्रियों के समान भंग लिखा है ना नहीं वहाँ के नीचे अलग से लिखो चार घाती कर्मों का पंचेंद्रिय सर्व विशुद्ध जगन्य अनुभाग बंद में अवस्थित ये डैश करके लिखो ना यानी पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं ये चार घाती कर्मों का पंचेंद्रिय सर्व विशुद्ध जगन्य अनुभाग में अवस्थित जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित हमने शॉर्ट में लिख दिया नहीं गोत्र का एक इंद्रिय के समान हाँ गोत्र का एक इंद्रिय के समान यानी कौन अग्नि का एक वायु का एक इंद्रिय के समान हमें मालूम है अग्नि का एक वायु का एक में वो जगन्य होगा गोत्र का एक इंद्रिय के समान हाँ एक इंद्रिय में बादर एक इंद्रिय ही जगन्य करता है वो भी अग्नि का एक वायु का एक करता है एक इंद्रिय मार्गणा में वो बता चुके थे और वेदनीय नाम के लिए मध्यम परिणाम वाला कोई भी हो सकता है,
लेकिन जैसे पंचे नहीं
कोई भी। हाँ आयु तो उसके समान होती है। अब अना हो गया ना, अनाहारकों में कार्मण कायोगी जीवों के समान भंग है। कार्मण कायोगी में याद है विशुद्धि जहाँ होगी वहाँ चार घाती का जगह नहीं, तो अनाहारक में यानी कार्मण कायोग में विशुद्धि किसके होगी, चौथी गुणस्थान वाले की, उसको चार घाती का जगह नहीं होगा। वेदिनी नाम का मध्यम परिणाम वाला कोई भी जीव हो सकता है। गोत्र का जगन्य कौन करेगा, सातवें नरक का नरकी, जो सातवें नरक में उत्पन्न हुआ है अभी विग्रह गति में है वो करेगा जगन्य। हाँ कर्मण का युग, आयु का सवाल ही नहीं है वहां पर। इस प्रकार जगन्य स्वामित्व समाप्त हुआ, इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ यानी उत्कृष्ट का भी और जगन्य का भी स्वामित्व समाप्त हुआ। थोड़ी इंट्रोडक्शन करते काल की, फिर कल तो रिपीट होने वाला ही है। ये 13 नंबर का अनुयोग द्वार है, पहले 11 तो वो हमने सारे देखे ना, सर्व नौ सर्व उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य वो सारे ध्रुव शादी अनादि वगैरह वगैरह, बाद में स्वामित्व देखा और अभी हम काल देख रहे हैं। काल का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लगातार कितने काल तक होगा, यहाँ एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है। और जगन्य 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 उत्कृष्ट कितने काल तक चलेगा ये यहाँ देखना है हमको। देखो काल दो प्रकार का है, अनुभाग में ही देखना है। जैसे हम स्थिति उत्कृष्ट देख रहे थे, यहाँ अनुभाग उत्कृष्ट देखना है। तो ये एक पैराग्राफ पढ़ते, काल दो प्रकार का है जगन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, पहले उत्कृष्ट की बात करेंगे। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कितना काल है, वो कहाँ होता है, तो मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला ये हमने देखा था, पंचेंद्रिय उत्कृष्ट उत्कृष्ट जगन्य अभी सोच कर आए। तो कहते जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है। स्थिति के लिए उत्कृष्ट स्थिति का बंध अंतर्मूर्त तक था, यहाँ दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बराबर है। अभी सोचा पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट होगा और वो एकेंद्रिय में अनंत काल तक चला गया, तो उत्कृष्ट बंद ही नहीं करेगा। तो क्या करेगा, अनुत्कृष्ट करेगा। जो उत्कृष्ट का अंतर है ना, तो उत्कृष्ट का काल है यहाँ पर। हाँ और ये है उत्कृष्ट मैक्सिमम दो समय तक कर सकता है, ये ख्याल में रखना। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आपको याद है ये कहाँ होता है उत्कृष्ट, ये प्रशस्त प्रकृति है, क्षपक अंत में। वो क्षपक अभी चले जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ऊपर चलेगा, एक ही समय के लिए करेगा। क्योंकि जैसे स्थितिबंध अंतर्मूर्त तक होता है, श्रेणी में अंतर्मूर्त तक उतना का उतना स्थितिबंध होता है, पर यहाँ प्रति समय अनुभाग का बढ़ना होता होता, एक इसको अनुसमय अपवर्तन या अनुसमय वो बढ़ना ऐसा कहते हैं। प्रशस्त कर्मों का अनंत गुणा बढ़ता हुआ, अप्रशस्त में अनंत गुणा घटता हुआ होता है प्रति समय अनुभाग में, ये विशेषता है। स्थिति में क्या था, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त उतना अवस्थित था, फिर घट गया संख्यात गुणा कटौती होगी, फिर उतना का उतना चढ़ते समय। यहाँ प्रशस्त समय तो बढ़ता रहता है, तो एक ही समय के लिए है। जगन और उत्कृष्ट एक समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल तीन प्रकार का है, अनादि अनंत, क्योंकि कभी उत्कृष्ट करेगा ही नहीं तो अभव्य में अनुत्कृष्ट ही रहेगा, अनादि अनंत। उत्कृष्ट कब करेगा, शपक में जाएगा तो अंत में, तो नहीं तो क्या करेगा, अनुत्कृष्ट करेगा। अनादि शांत, क्योंकि जब उत्कृष्ट करेगा तो उसका अंत हो जाएगा, अनादि शांत। और सादी शांत, अनुत्कृष्ट का सादी शांत कब होता है, सादी कब हुआ, ग्यारहवें से दसवें में आया तो जो बंध किया वो अनुत्कृष्ट ही था, उत्कृष्ट तो क्षपक में होता है, और उत्कृष्ट किया सॉरी अनुत्कृष्ट किया और फिर ऊपर बंध रुक गया, तो अंतर्मूर्त में वो सादी शांत किया उसने, वो तो कितना है तो हम देखेंगे, सादी शांत उपशम श्रेणी। अभी जो सादी शांत काल है वो बताएंगे किसका, वेदिनी नाम गोत्र का, उसका उत्कृष्ट होता है सूक्ष्म साम्राज्य के अंत में, अदरवाइज उसका जो है वो अनुत्कृष्ट ही है। अभी उसमें जो सादी शांत है वो कैसा है, तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, ये कैसे, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के होता है। और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन, एक बार श्रेणी से उतरा तो अनुत्कृष्ट का सादी हुआ, और फिर जब शपक श्रेणी चढ़ेगा लास्ट में तब उसका अंत हो जाएगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव देखो देखो मिथ्या तो में जाओ, अनेक बार समय तो प्राप्त करे कोई बात नहीं है, शपक श्रेणी चढ़ेगा तो उसका उत्कृष्ट होगा। अनुत्कृष्ट अनादि से था, शादी कब हुआ, पहले भो में सम्यक प्राप्त करके संयम धारण करके उपशम श्रेणी से उतरा तो शादी हो गए, अब अर्ध पुद्गल परमसन घूमा और अंत में जाके उसे देख शपक श्रेणी चढ़ी तब अंत हो गया उसका। चलो अभी रुकते हैं, ये दो तीन लाइन पढ़ो क्या। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुभाग में ऐसा नहीं है, उसकी बात अंतर की बात नहीं चल रही, काल की बात सोचो, अभी काल में अंतर मत निकालो। अनुत्कृष्ट अनुभाग बन
एक समय के लिए उत्कृष्ट बन गया और दूसरे समय के लिए भी कोई कर
हाँ। अनुत्कृष्ट अनुभाग बन का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, बीच में अनुत्कृष्ट किया। देखो देवाई तो बांध रहे मान लेते 33 अगर की लगातार स्थिति तो उतनी बांधे, स्थिति में तो हम आबादा को लेते हुए एक एक समय घटता हुआ, पर यह अनुभाग कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक समय से लेकर अंतर्मूर्त
तो
बताया।
आयु में जो अभी में जो बनती है
ऐसा नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो स्थिति में कुछ, हाँ स्थिति में वो बात अलग है,
पहले बांधी और दूसरी बार बांधी,
अनुभाग में कोई नहीं कितनी, हाँ अभी वो 33 सागर की दो बार बांध देगा, ऐसा भी हो सकता है, अनुभाग कभी भी हो सकता है। इसी प्रकार सॉरी अनुत्कृष्ट अनुभव का उत्कृष्ट अंतर, इसी प्रकार आयु कर्म का अनाहारक मार्गनाथक काल जानना चाहिए, अनाहारक मार्ग ने आहार मार्गनाथक समझना है इसको, अनाहारक में तो आयु ही नहीं बनती। इसी प्रकार ऊग के समान मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभव है ना चार घाती कर्म का, असंयत अचक्षु दर्शनी भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों में अनादि अनंत विकल्प नहीं है। अब यही रुकेंगे, हाँ कल फिर दोबारा ले लेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।